ओम शांति। अव्यक्त वाणी 23 अप्रैल 1977। पश्चाताप की श्रृंखला में आज की अगली कड़ी ज्ञान का खजाना समय की पहचान के कारण अब नहीं तो कब नहीं दे सकते, अब देंगे तो भविष्य में अनेक जन्म प्राप्त होगा। इस आधार पर समय के महत्व के कारण सदा विश्व सेवाधारी बनने से सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी का खजाना अखूट बन जाता है। श्वासों का खजाना समय के महत्व प्रमाण एक का पदम गुना या बनने के वरदान का समय समझने से, अर्थात कर्म और फल की गुह्य गति समझने से व्यर्थ श्वासों को सफल बनाने की सदा स्मृति रहने से श्रेष्ठ कर्मों का खाता व श्रेष्ठ कर्मों का सूक्ष्म संस्कार रूप में बना हुआ खजाना स्वतः ही भरता जाता है। तो सर्व खजानों के जमा का आधार समय के श्रेष्ठ खजानों को सफल करो तो सदा और सर्व सफलता मूर्त सहज बन जाएंगे। लेकिन करते क्या हो, अलबेलापन अर्थात करने के समय करते हुए भी उस समय जानते नहीं हो कि कर रहे हैं, पीछे पश्चाताप करते हैं, इस कारण डबल ट्रिपल समय एक बात में गवा देते हो। एक करने का समय, दूसरा महसूस करने का समय, तीसरा पश्चाताप करने का समय, चौथा फिर उसको चेक करने के बाद चेंज करने का समय। तो एक छोटी सी बात में इतना समय व्यर्थ कर देते हो और फिर बार बार पश्चाताप करते रहने के कारण कर्मों का फल संस्कार रूप में पश्चाताप के संस्कार बन जाते हैं, जिसको साधारण भाषा में मेरी आदत व नेचर कहते हो। तो अव्यक्तवाणी है 23 अप्रैल 1977। एक व्यक्ति एक बार जंगल जाता है और जंगल में एक प्राणी को देखता है, एक जंतु को, और आ करके अपने मित्रों को बताता है कि मैंने एक लाल कलर का प्राणी देखा। दूसरा मित्र कहता है कौन सा झाड़, कौन सा जंगल, तो वो बताता है। दूसरा मित्र कहता है मैंने भी उसी जंगल में और उसी झाड़ पर एक पीले कलर का प्राणी देखा। तीसरा कहता है मैं भी वहीं गया था परंतु मैंने लाल कलर का एक प्राणी देखा। कुछ मित्र और आ जाते हैं और वो कहते हैं कि नहीं नहीं हमने तो काले कलर का देखा। कोई कहता है नहीं मैंने नारंगी कलर का देखा। तो सोचते क्यों ना हम लोग सब वहां जाए उस झाड़ पर, झाड़ के पास। तो सब लोग उस झाड़ के पास आते हैं और वहां पर झाड़ के समीप एक व्यक्ति सो रहा होता है। उसको उठाते और पूछते हैं कि इस झाड़ में एक पक्षी है या प्राणी है, वो कौन से रंग का है, क्या वो लाल रंग का है, पीले रंग का है, नीले रंग का है। सब अपने अपने रंग बताते हैं। तो वो व्यक्ति कहता है आपने जितने भी रंग बताए वो सब सही है, कौन है वो पक्षी, पक्षी या गिरगिट, परंतु वो कभी कभी बिना रंग के भी है, क्योंकि मैं इस झाड़ के नीचे रहता हूं, मुझे उसके सारे रंग पता है। और आप लोग जिसने एक एक करके एक एक रंग देखा उसको एक ही रंग पता है। भगवान का स्वभाव भी ऐसा है, बदलने वाला है। उसे वही जान सकता है जो निरंतर उस झाड़ के नीचे रहता है, जो निरंतर उसके संग में रहता है और जिन निरंतर उसके शब्द उसके महावाक्यों का अध्ययन करते रहता है, जो दूर से देखता है और कभी कभी देखता है और कभी कभी गहराई में जाता है, वो केवल एक आयाम, एक पहलू, एक लेयर, एक परत को जानता है और वो असंख्य है, अनंत है, अमाप है, उसकी परतों का कोई अंत नहीं। सुबह की साकार मुरली एक नई परिभाषा थी मन मनाभव की। कौन सी? घर जाना, इसे कहा जाता है मन मनाभव। कितनी अलग बात है, कितनी नई बात है। कभी कुछ तो कभी कुछ तो कभी कुछ तो कभी कुछ, हर बार नए नए रूप। पर हाँ, जिसने एक ही रूप देखा है वो कहेगा उस मुरली में ऐसा था, इस मुरली में ऐसा। पर जानेगा कौन? जो उस झाड़ के नीचे निरंतर रहता है और निरंतर देखता रहता है। वो कहता है हाँ, वो नीला भी है, वो पीला भी है, वो हरा भी है, और कभी कभी तो वो रंगहीन भी है। अन्यान्य रंग है उसके, अनेक रंग है उसके। यदि उसके सारे रंग जानना है तो क्या करना पड़ेगा? झाड़ के नीचे रहना पड़ेगा उस व्यक्ति की तरह, तो हम उसे जान सकेंगे। उसके समीप रहना पड़ेगा, उसके साथ चलना पड़ेगा। उसके साथ चलना अर्थात उसके सानिध्य में रहना। अर्थात क्या? दो व्यक्ति है रास्ते से जा रहे, आपस में बात नहीं करते, तो क्या कहेंगे कि ये दोनों साथ चल रहे? कोई यादें रहेगी बाद में, साथ अर्थात बात करते करते कोई संबंध है। तो भगवान हमारा साथी है, तो साथी अर्थात साथ साथ चलना, उठना, बैठना, बात करना, देखना, और उसके स्वरूप को, उसके स्वभाव को, उसके मन को जानना, उसकी इच्छाओं को, नेचर ऑफ गॉड क्या है ये समझना। तो बाबा असंख्य आयामों से भरा हुआ है, जब जब उसको देखो अलग अलग दिखाई देता है। है वो एक ही, परंतु हमारी अवस्थाएं नीचे ऊपर है, कभी इधर कभी इधर। इसलिए आज कहा कि तुम्हें हिलना नहीं है, क्या करना है? ड्रामा के पट्टे पर अचल। समय के खजाने के विषय में बाबा यहां बता रहे हैं। 77 की वाणी है। एक है ज्ञान का खजाना, एक है खुशी का खजाना, तीसरा बताया समय या श्वास का खजाना, श्वासों का खजाना, समय का खजाना। तो सर्व खजानों के जमा का आधार समय के श्रेष्ठ खजानों को क्या करो? सफल करो। सफल करो अर्थात क्या करो? सफल करो अर्थात, सफल शब्द हिंदी भाषा का शब्द है, परंतु शायद ही विश्व में उस तरीके से प्रयोग किया जाता है जैसे बाबा करते। सफल अर्थात सक्सेस, परंतु ये भोजन को सफल करो ऐसा कोई किसी भाषा में प्रयोग नहीं करते। सफल करो अर्थात श्रेष्ठ के तरफ लगाना, सफल करो अर्थात यूटिलाइज इन अ वर्थ वाइल मैनर, चाहे वो समय हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो भोजन हो, चाहे वो जीवन हो, कुछ भी। तो यहां बाबा कह रहे सर्व खजानों के जमा का आधार समय के श्रेष्ठ खजानों को सफल करो तो सदा और सर्व सफलता मूर्त सहज बन जाएंगी। लेकिन करते क्या हो, अलबेलापन अर्थात करने के समय करते हुए भी उस समय जानते नहीं हो कि कर रहे, बेहोशी में कर्म किए जा रहे हैं, इसके लिए पाप कर्म बन रहे हैं। पीछे पश्चाताप करते हो, इस कारण डबल ट्रिपल समय एक बात में गवा देते हो। चार स्टेप्स बताई है यहां बाबा ने। एक तो कर दिया, फिर महसूस करना गलत कर दिया है, तो सारी अच्छी स्टेप्स, पर ये भी टाइम वेस्ट है। पहला कर दिया गलत, फिर महसूस किया गलत किया, फिर पश्चाताप किया गलत किया, तीसरी स्टेप, चौथी चेक किया और चेंज किया है तो बहुत अच्छी चीज। पर बाबा कह रहे ये समय कौन सा चल रहा है, बार बार गलती करना, फिर पश्चाताप, महसूस करना, पश्चाताप करना, चेक करना, चेंज करना। वैसे तो ये सारी बातें करनी चाहिए, पर यहां बाबा कह रहे हैं एक करने का समय, दूसरा महसूस करने का समय, तीसरा पश्चाताप करने का समय, चौथा फिर उसको चेक करने के बाद चेंज करने का समय। तो एक छोटी सी बात में इतना समय व्यर्थ कर देते हो, एक छोटी सी बात में इतना समय व्यर्थ कर देते हो, और फिर बार बार पश्चाताप करने के कारण कर्मों का फल संस्कार रूप में पश्चाताप के संस्कार बन जाता है। ये कर्म इतनी बार करते हो कि पश्चाताप करना ही संस्कार बन जाता है, पश्चाताप की ही आदत बन जाती है। पश्चाताप आदत, एडिक्शन, क्योंकि आत्मविश्वास खो जाता है। कुछ भी करो तो पहले ही पता चलता है कि ये गलत होगा और पश्चाताप तैयार है। जिसको साधारण भाषा में मेरी आदत या नेचर, कोई भी चीज रिपीट करो आदत बन जाती है, और कोई कोई चीज एक ही बार करो तो भी आदत बन जाती है। विकार उस श्रेणी में आते हैं। संसार में बहुत बार करते हैं चीजें तो आदत बनती है, पर विकार जो है वो एक आदत को निर्माण करता है। इसके लिए एक बार भी नहीं, इसको साधारण भाषा में मेरी नेचर, मेरी आदत कहते हो। ये 77 के महावाक्य है। तो करना, फिर महसूस करना, ये नहीं करना चाहिए था, पश्चाताप करना, चेक किया, चेंज किया, ये चार स्टेजेस। कुछ दिनों के बाद फिर से करने की इच्छा, जिसके लिए पश्चाताप किया था और जिसके लिए संकल्प किया था और जिसको सोचा था इसको चेंज करना है, उसको फिर से वही गलती, फिर से करना, फिर से अब गहरी महसूसता है, क्योंकि ये सेकंड टाइम हो रहा है। पहली बार महसूसता थी, पर अब भी महसूसता है, परंतु अब महसूसता के साथ दुख जुड़ा हुआ है, और फिर पश्चाताप, और फिर उसके बाद में फिर से चेक, फिर से चेंज। परंतु इस बार का जो चेंज है वो इतना शक्तिशाली नहीं है, वो थोड़ा ढीला हो गया है। ये सेकंड, फिर भी कर लिया, फिर से थर्ड, और इस तरह आदत का निर्माण। इसके लिए जब भी कोई गलती हो, बड़ी गलती या छोटी गलती, पाप कर्म हो, विकर्म हो, कुकर्म हो, श्रीमत का उल्लंघन हो, ऐसी बात हो जाए जो नहीं होनी चाहिए थी, जो देह भान की है, जो देह अभिमान की है, जो देह अहंकार की है, जो विकार की है, जो व्यर्थ की है, जो निगेटिव की है, जो स्वयं को और दूसरों को गिराने वाली है, जो यज्ञ की निंदा, बाप की ग्लानी करने वाली है, अगर अनायास जबरदस्ती अनजाने में ऐसी कोई बात होती है तो फिर से यही चार स्टेप है, परंतु गहराई से। सबसे पहले तो कर लिया, वो तो हो गया पूरा। नेक्स्ट है महसूस था, जिसको जितनी गहरी महसूसता है वो उतना गहरा बदलाव लाता है, और जिसको ऐसा लगता है ये तो ठीक है, हो गया तो हो गया, फिर से नहीं करेंगे, इतना सोच लेता है वो होते रहता है, क्योंकि बहुत हल्का ले लिया उसको। उस महसूसता को गहरा करना है, और ऐसा गहरा करने के लिए बहुत सूक्ष्म एकांत चाहिए, बहुत मौन चाहिए। वैराग चाहिए हर बात से, ऐसा वैराग कि कुछ भी यहां का अच्छा ना लगे, संसार का। आज कहा ना, कितनी बार कहा, तुमको मैं लेने आया, यही मनमना भाव है। तुम एक्टर हो, तुम्हें चलना है वापस वो भाव, और फिर उस पार्श्वभूमि में देखना कि जब ये चलने का समय है तो ये मैं क्या कर रहा हूं, ऐसे ये कौन से नए कर्म बंधन निर्माण कर रहा हूं, जबकि ये सारे कर्ज उतारने का समय है। संगम युग क्या है? कर्ज उतारने का समय, सारे बंधन समाप्त करने का समय है, नए फ्रेश बॉन्डेजेस निर्माण नहीं करना है। किसी ने हमको कुछ दे दिया, और चाहे खाने की वस्तु या कुछ हो, और हमको बहुत पसंद आ गई, तो हमको लगता है उसको वापस फोन करके बताया कि ये बहुत अच्छा था, ताकि वापस भी मिल सके अगली बार जब आओगे, अगले साल जब आओगे। पर इसमें भी बंधन है, हर चीज में बंधन है, चाहे खाने चाहे और कोई वस्तु। आई तो आई, गई तो गई, उसका कोई चिंतन नहीं वस्तुओं का, नहीं तो सब तो छोड़ दिया, वस्तुओं में आकर्षण मोह हो गया। लौकिक को छोड़ देना बहुत आसान है, परंतु अलौकिक में लौकिकता जो निर्माण कर रखी है उसको छोड़ना, ये पुरुषार्थ है। अलौकिक में लौकिकता के बंधन निर्माण कर रखे है, तो सारे बॉन्डेजेस समाप्त कर जाने का समय है। इसके लिए हम कहीं पर फंस नहीं सकते, कहीं पर और किसी में भी। तो हम बात कर रहे थे सबसे पहले गलती की, फिर महसूसता की। तो महसूसता भी कैसी हो? डीप, और उसके लिए चाहिए मौन, और उसके लिए चाहिए डिटैचमेंट। डिटैच, बिना डिटैचमेंट के आगे नहीं बढ़ा जा सकता। फुल डिटैचमेंट बीच बीच में हर बात से, व्यक्तियों से, संबंधों से, घर से, परिवार से। कुछ समय के लिए हमारी दिनचर्या में ऐसा समय हो जिसमें हम फुल डिटैच है, किसी से कोई लेना देना नहीं, इतना डिटैच्ड, ऐसा परम वैराग का भाव जिसमें लगे कि बस यहां से जाना है, यहां से जाना है, हर दिन इन क्षणों को जमा करना है। वैराग्य क्षण अनमोल क्षण है जीवन के, और अचानक नहीं आता है, जो बहुत 10 चीज़ों में इन्वॉल्व है उसको न चाहते हुए भी उसमें डूबा रहता है। तो दिनचर्या में ऐसे कुछ पल हो जिसमें हम सबसे डिटैच, ना किसी को फ़ोन करना है, ना किसी को कोई मैसेज करना है, ना किसी से कोई बात करने की इच्छा है, कुछ नहीं। जैसे सारे संबंध खत्म हो गए, इतनी डिटैचमेंट अंदर। बीच बीच में समय निकाल कर, और जब ऐसी डिटैचमेंट होगी आंतरिक, तब महसूसता होती है। बिना डिटैचमेंट की महसूसता नहीं हो सकती। डिटैच्ड सबसे, शरीर से, शरीर के संबंधों से, घर से, व्यक्तियों से, वस्तुओं से, साधनों से, सब चीज़ों से। ऐसी डिटैचमेंट का जो क्षण है उसमें गहरी महसूसता आती है कि ये गलती हो गई, ये नहीं होना चाहिए था, फिर भी हो गया। और तीसरी स्टेप बताई, पश्चाताप। पश्चाताप भी झूठा वाला नहीं, ऊपर ऊपर का नहीं, दिखावे वाला नहीं, परंतु ऐसा पश्चाताप जो प्रायश्चित बन जाए। प्रायश्चित अर्थात जिसमें संपूर्ण परिवर्तन हो, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन। तीव्र पुरुषार्थ की परिभाषा बाबा ने दी है कभी, जो गलती एक बार हो गई वो दोबारा रिपीट न करना, इसे कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थ। ये परिभाषा है तीव्र पुरुषार्थ की। एक ही गलती बार बार करते रहना। एक व्यक्ति से धोखा मिला, छोड़ा, अब इसको छोड़ो, अब दूसरा पकड़ा, फिर उससे धोखा मिला, फिर वैराग आया, फिर तीसरे को पकड़ा। ये वैराग नहीं है। वैराग अर्थात किसी एक स्त्री से वैराग नहीं, सभी स्त्रियों से वैराग। वैराग अर्थात एक पुरुष से वैराग नहीं, सभी पुरुषों से वैराग, सभी देहधारियों से वैराग, सभी संबंधों से वैराग, इस संसार से ही वैराग। आज की मुरली में तुम्हारा है बेहद का, उनका है हद का। बाप कभी हठयोग नहीं सिखा सकते और वो कभी राजयोग नहीं सिखा सकते। तुम्हें गृहस्थ व्यवहार से, गृहस्थ से नफरत नहीं करनी है, परंतु क्या करना है, वहां रहते हुए पवित्र रहना है। इसका मतलब ये तो उनसे भी बड़ा भारी काम है, उनके लिए आसान है, यहां से ही छोड़ दो और भागो उधर, पर यहीं रहो। वो वीर है जो यहां रह के करते हैं, वो महावीर है। ये अंतर है वीर और महावीर का। सबके बीच में रहते हुए डिटैच्ड, सबके बीच में रहते हुए वीतराग, सबके बीच में रहते हुए पवित्र, जहां पर चहुओ और अपवित्रता है, विकार है, संसार की चमक धमक, संसार के सारे प्रलोभन और सारे आकर्षण, उसके बीच में रहते हुए संपूर्ण अनासक्त। ये तो बहुत बड़ी साधना है। तो पश्चाताप कैसा हो, गहरा हो, डीप हो, परिवर्तन कर देने वाला हो, हिला देने वाला हो अंदर से, जैसे एक भगत है, रोज उठता है सुबह 5 बजे और भगवान की आराधना करता है, एक बार नहीं उठता है 6 बजे उठता है, दिन भर इतना रोता है। ये कैसे हो गया? कोई ब्राह्मण भी नहीं रोता होगा अमृत वेला करने के बाद, छूटने के बाद। कितनी अच्छी तरह से अपने आप को समझा लेते हम, हो गया तो हो गया, क्या है उसमें, कल कर लेंगे, दिन में ज्यादा कर लेंगे। परंतु वो भगत इतना रोता है, ऐसे हुआ कैसे?
आज तक ऐसा हुआ नहीं, इतना उसको दुख होता है, इतनी पीड़ा होती है। और दूसरे दिन सुबह सुबह 5 बजे एक आवाज़ आती है, उठो, उसको लगता है भगवान की आवाज़ है, क्योंकि इतना रोया है ना, तो भगवान उठाने आया। पर देखता है, पूछता है कौन, तो वो कहता है शैतान। कहते तुम कैसे, कहते कल तुम कितने रोए, इसके लिए मैं खुद ही तुमको उठाने आ गया। अगर ये बात उसको पता चल जाए तो मेरा क्या होगा फिर, कि मैंने तुमको उठाया, जगह सुला के रखा था और तुम इतने रोए, इसके लिए मैं ही खुद आ गया, क्योंकि मुझे भी तो जिंदा रहना है। तुम चलो, पर दूसरे मेरे कितने हैं, दोस्त, गिराइक, ग्राहक, बहुत है दूसरे। तो पश्चाताप गहरा हो, पश्चाताप डीप हो, पश्चाताप दिल की गहराई का हो, सच्चा हो, और उस पश्चाताप के साथ। वैसे तो संकल्प करने की भी आवश्यकता नहीं, ये संकल्प जुड़ा हुआ ही है कि ये फिर नहीं होगा, स्वतः ही जुड़ा हुआ है। फिर चौथी स्टेप बताई, चेक और चेंज। चेंज ये चार स्टेप है, पर ये चार स्टेप्स में भी बाबा कह रहे हैं छोटी छोटी बातों में ये चीजें करते रहते हो और फिर पश्चाताप करते रहते, फिर मैं गलत ये करते हो, टाइम कितना वेस्ट जा रहा है, समय कौन सा चल रहा है, ये किस चीज का ये समय है, क्या करने का समय है ये। 100 बातें बताओ कौन सी चीज का समय है ये। ये समय है जमा करने का, ये समय है परिवर्तन करने का, ये समय है बादशाही पाने का, ये समय है मिलन मनाने का, ये समय है सबको सुख शांति देने का, ये समय अपने लिए क्या करने का है, पहले वो मौजों का, ये समय है ठिकाने लगने का और लगाने का, ये समय है निर्विघ्न बनने का बनाने का, ये समय है दुआएं लेने का दुआएं देने का, ये समय है ना दुखी होने का ना दुख देने का। दुखी दुख देते तो नहीं, पर दुखी हो जरूर जाते, दुखी होने का स्वभाव ऐसा है जबरदस्त, जैसे कोई माँ है उसका बेटा बीमार है तो वो दुखी है, ये बेटा बीमार क्यों है। एक है उसका कर्तव्य कि उसको डॉक्टर के पास लेके जाए, उसका इलाज कराए, वो तो कर रही है, पर साथ में दुखी है, ये तो दुख ले लिया ना, दुख लिया ना तो श्रीमत तोड़ दी। तो ये समय है स्वयं को परमात्मा दुआओं से भरने का, ये समय है 3 सर्टिफिकेट लेने का, ये समय है पश्चाताप करने का या ना करने का। अगर पाप किया है तो करने का, अगर नहीं किया है तो ना करने का। और क्या करना, चढ़ती कला का ये समय है, उड़ती कला का ये समय। 7 कलाएं हैं ब्राह्मण जीवन की। एक है ठहरती कला, ठहर चुका है पुरुषार्थ, रुक गया है, पता ही नहीं हम कहाँ है या पीछे भी जा रहे हैं, कोई ठहर गया है पुरुषार्थ। एक है चलती कला, चल रहे हैं सब, चल रहे हैं हम भी, चल रहे हैं, मुरली तो सुन लिया, अमृत वेला कर लिया, और क्या करना है। एक है दौड़ती कला, तीसरा जिसमें दौड़ती कला, आज कहा ना ये रेस है, रेस तो नहीं कहा, यात्रा कहा, ये रूहानी यात्रा है। तो एक है यात्रा, एक है रेस, दोनों में क्या अंतर है, क्या समझना चाहिए, रेस या यात्रा? रेस समझना चाहिए। यात्रा अर्थात चल रहे हैं आराम से, ढीले ढीले चल रहे हैं सब, पर जहां रेस है वहां कौन सा नशा है, आगे जाने का। और इसे कहा जाता है हर्डल रेस, हर्डल अर्थात बहुत सारी बाधाएं इस रेस में, हर्डल रेस इसको कहा जाता है। तो रेस रखनी है, रेस का भाव होना चाहिए, रेस है ये, और मुझे आगे जाना है, बहुत आगे जाना है। और टेंशन आना चाहिए, ये देखो ये आगे जा रहे हैं, ये इतना आगे जा रहे हैं, मैं इनसे आगे जाऊंगा। किसमें? याद की यात्रा में। हाँ, कोई हमसे ज्यादा याद कर रहे, हम उससे ज्यादा याद करेंगे। तो हर्डल रेस, ऑब्स्टेकल रेस, ये ऐसी रेस है। तो रेस और यात्रा, यात्रा से भी ज्यादा क्या समझना, रेस है, भागना है इसमें। कौन सा समय है? संपूर्ण पावन बनने का, संपूर्ण प्यूरिटी को धारण करने का, सर्वगुण संपन्न बनने का, 16 कला संपूर्ण बनने का। 16 कलाएं कौन सी है, इस पर एक दिन चर्चा होगी आगे। वो वाली नहीं, सतयुग की 16 कलाएं जो कि भारत के शास्त्रों में वर्णित है, ऐसी 16 कलाओं का वर्णन है कुछ शास्त्रों में। कृष्ण की 16 कलाएं जिसको कहा गया है, क्योंकि कृष्ण को भक्ति मार्ग में भी 16 कला बताया, राम को 14 कलाएं बताया। एक तो कला बताई है धन की, जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य, एक कला शारीरिक सौंदर्य की है, इस तरह की ऐसी 16 कलाएं है। वैसे ब्राह्मण आत्माएं अलग अलग रीति से इसका चिंतन किया हुआ है कई आत्माओं ने, 16 कला। कई लोग कहते 16 कोई 16 नंबर थोड़ी ना है, 16 अर्थात संपूर्णता, 100%। जैसे 16 आना सच, वैसे 16 आना कहावत है, मुहावरा है, परंतु वास्तव में 16 अलग अलग कलाओं का कुछ शास्त्रों में वर्णन है। 1, 2, 3, 4 इस तरह से उसका शरीर ऐसा है कि आकर्षण करेगा, उसकी वाणी ऐसी कि आकर्षण करेगी। एक एक चीज का वर्णन है एक एक कला के रूप में। यह समय और कौन सा है? बाबा को अर्पण करने का, सारे संबंध जोड़ने का, सर्व संबंधों से याद करने का, उसके प्रेम में खोने का, और दूसरों को उसका बनाने का, और उसके हवाले कर देने का। एक ही हो गया वो, और कौन सा समय है? सर्व प्राप्तियां करने का, भाग्य बनाने का, भाग्य की लकीर कलम से अपनी तकदीर लिखने का, और उसकी नजरों में बसने का, उसकी नजरों में बसने का, और अपनी नजरों में क्या बिठाने का? मुक्ति और जीवन मुक्ति। कौन सी आंख में मुक्ति और कौन सी आंख में जीवन मुक्ति? दाएं में कौन सी और बाएं में कौन सी? दाएं और बाएं। तो ये सारी बातें, इसका आप चिंतन करना। ये चर्चा आज हम नहीं करेंगे, आज हम चर्चा करेंगे समय की, टाइम मैनेजमेंट। बाबा ने कहा समय को व्यर्थ नहीं गवाओ, समय एक खजाना है, टाइम प्रायोरिटी है, समय पंछी है, समय भंवर है, समय दान करो, सब बुद्धि से समय का दान करो, समय घड़ी है। तो समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट इज थॉट मैनेजमेंट। सबसे पहली परिभाषा है समय प्रबंधन की, जिसने थॉट को मैनेज किया उसका अपने आप टाइम मैनेज हो जाता है। तो जैसे यहाँ बाबा कह रहे हैं कि तुम ब्राह्मण अपना समय इसमें गवा देते हो, छोटी छोटी बातों में कर्म किया, अफसोस किया, पश्चाताप किया और फिर चेक चेंज किया, ये न करते हुए ऐसा क्या करो? तो वो तो सबसे पहले तो श्रेष्ठ कर्म, पर उसके बाद में भी एक प्रश्न जो है वो है समय का प्रबंधन कैसे करें, टाइम। तो इसकी हम कुछ बातें देखेंगे। सबसे पहले प्लानिंग कब करनी है? प्लानिंग अमृत वेले के बाद का जो समय है उसमें बैठकर प्लानिंग करनी है, आज क्या क्या करना है। मनसा दिनचर्या, मनचर्या और दिनचर्या, दो शब्द है, मन की चर्या, दिन की चर्या। आज कौन कौन से काम है? पहले तो स्थूल काम, जैसे डिपार्टमेंट जाना और किसी से मिलना और कोई महत्वपूर्ण मीटिंग, या कहीं नीचे जाना, या आज जाने का ही दिन है यहां से बाहर, वो सब कुछ चाहे कोई मधुबन में रहता है या सेवा केंद्र में रहता है या घर गृहस्थी में रहता है, कहीं पर भी रहता है, थोड़ी सी प्लानिंग होनी चाहिए। नहीं तो सारे दिन भर कोई प्लानिंग नहीं और कूद गए दिन में हवाओं के झोंकों के साथ इधर उधर बह रहे। कोई आ रहा है कहता है चलो मेरे साथ थोड़ा घूमने, उसके साथ चल दिए, जा रहे थे योग करने कहीं और ही पहुंच गए। तो सबसे पहला क्या करना है, प्लान करना है। नेक्स्ट टाइम बॉक्सिंग, नेक्स्ट है टाइम बॉक्सिंग। टाइम बॉक्सिंग क्या होती है, टाइम बॉक्सिंग अर्थात 9 से 10 बजे तक क्या करना है, 10 से 11 बजे तक, 11 से 12, 12 से 1, इसको कहते हैं टाइम बॉक्सिंग। जैसे वो हमारी किताब है ना, उसके पीछे हमारी दिनचर्या लिखी हुई है, यज्ञ की छोटी किताब के पीछे लिखी होगी, तो हाँ वो इसको कहते हैं टाइम बॉक्सिंग। 3:30 बजे उठना, 4 से 4:45 तक ये करना, ये करना, तो ये तो जनरल है। वैसे अपनी बनानी है एक टाइम बॉक्सिंग। इसके साथ एक दूसरा तीसरी मेथड है टाइम मैनेजमेंट की, टाइम बफरिंग। टाइम बफर अर्थात जैसे अभी यहां पर है 8 से 10 बजे तक ब्रेकफास्ट एंड कर्म योगा, फिर क्लास है 10:30 बजे, बीच का आधा घंटा छोड़ा हुआ है, तो वो टाइम छोड़ के रखना थोड़ा सा, इसको कहते हैं टाइम बफरिंग। आना जाना एकदम टाइट 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11 ऐसा करें तो बीच में कुछ और भी तो करना है थोड़ा, 5-10 मिनट, उसको कहते हैं टाइम बफरिंग। तो अपनी दिनचर्या में एक तो टाइम बॉक्सिंग, टाइम प्लानिंग, टाइम बॉक्सिंग, टाइम बफरिंग, ये तीन चीजें रफ प्लानिंग हर दिन सुबह सुबह करके रखनी है कि ये ऐसा ऐसा आज मुझे करना है रफ। फिर उसमें एकदम परिवर्तन कुछ हो जाए वो दूसरी बात है, पर करके तो रखना है। इमरजेंसी कुछ आ जाए तो सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा, वो दूसरी बात है। उसके बाद है प्रायोरिटाइज। प्रायोरिटाइज अर्थात प्राथमिकता किसको देनी है, प्राथमिकता किसको देनी है, सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन सा है आज का, पहले यह सोचना है। वो हो सकता है किसी को मिलना है या कोई अव्यक्त मुरली पढ़नी है, क्योंकि या फिर मुरली में कोई नया शब्द आया है चंद्रकांत वेदांत क्या है ये कुछ तो आया है नया उसको ढूंढना जरूरी है क्योंकि ये बार बार फिर आएगा तो कुछ नया कुछ आया है तो वो ढूंढना प्रायोरिटी है या पूछना, नई चीज जो आ रही है चाहे मुरली में या और कहीं। चौथी टांग, टूटी हुई बैल की चौथी टूटी हुई टांग, वो तीसरी टांगे, तीन टांगे कौन कौन सी है, चिंतन का टॉपिक है आज का है ना। तीन टांग टूटी है या एक टांग टूटी है, एक टूटी है, तीन टूटी तो तो ये बैल और टांग ये सब क्या है, कहां की उपमाएं हैं, ये ढूंढना है इनको। तो प्रायोरिटाइज अर्थात इसमें कुछ भी हो सकता है कि आज सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन सा है, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब कर्तव्य पुकारे सब गौन है, ज्ञान योग सब कुछ सब छोड़ दो, जहां पर कर्तव्य पुकारे, कोई क्लास है, बाबा आ रहे, सब छोड़ दो, कर्तव्य के ऊपर कुछ भी नहीं है, वो फर्स्ट है। अगर वो पुकार रहा है उसके सामने सब गौन है। तो प्रायोरिटी किसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देना है, जैसे नुमा शाम का योग है तो वो करना ही है, वो प्रायोरिटी है। एक अमृत वेला है वो प्रायोरिटी है, मुरली है प्रायोरिटी है, बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल है वो भी प्रायोरिटी है, या फिर स्थूल काम, एकदम स्थूल काम, किसी से मिलना है, किसी को कुछ देना है, किसी से कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना है, और कोई क्लास। एक और लक्ष्य रखना है कि कुछ तो सुनते रहना है अच्छी अच्छी बातें दिन भर, कुछ नई बातें और कुछ अच्छी बातें हमारे कानों में जाए, तो वो एक, तो इसको कहते हैं प्रायोरिटाइज। फिर होता है ब्लॉक आउट डिस्ट्रैक्शंस, नेक्स्ट विधि है पांचवी, चौथी है पांचवी, डिस्ट्रैक्शंस जो है उसको हटा दो। जैसे योग कर रहे हैं, जैसे मुरली पढ़नी है, इसको थोड़ा बाजू में रख दो, इधर मुरली पढ़ी मैसेज, अच्छा फिर मुरली पढ़ी, फिर से मैसेज, फिर इधर पढ़ा, फिर और कुछ, फिर कॉल, फिर और कुछ, ये सब डिस्ट्रैक्शन है, डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस। थोड़ी देर के लिए इसको बाजू रखो और केवल ये और रहे और हम रहे, तो एकाग्रता होगी पढ़ते समय, और तब सब कुछ याद रहेगा जो पढ़ रहे, नहीं तो जो माइंड स्कैटर्ड है वो कहां से एकाग्र होगा। एकाग्र करना तो ऐसे रखना होता है, तो सूर्य की किरणें वहां पड़ेगी और नीचे का कागज जल जाएगा, और एकाग्र मन इतना इग्नाइटेड माइंड कुछ भी कर सकता है, इतनी पावर है एकाग्र माइंड मन में। हम नहीं कर पा रहे, इसका मतलब, इसका कारण यह नहीं है कि हमारी बुद्धि कम है, हमको याद कम रहता है, कारण यह है क्योंकि एकाग्रता कम है। और किसी को यदि याद रहता है, कारण यह नहीं है कि वो ज्यादा बुद्धिमान है, कारण यह है कि एकाग्रता ज्यादा है। डिफरेंस एकाग्रता पर का है। स्वामी विवेकानंद ने एक जगह लिखा है, इफ आई वेर टू स्टार्ट माई एजुकेशन ऑल ओवर अगेन, आई वुड फर्स्ट मास्टर द आर्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड देन एट वन स्ट्रोक वुड गैदर ऑल द इंफॉर्मेशन। यदि मुझे अपना जीवन की सारा अध्ययन शिक्षा फिर से स्टार्ट करनी है बचपन से, तो सबसे पहले मैं एक काम करूंगा, एकाग्रता की शक्ति को हासिल करूंगा और फिर एक झटके से सारी जो सूचनाएं हैं उसको ग्रहण कर लूंगा। तो ये सारा जो ज्ञान है उसको समझने के लिए क्या चाहिए? एकाग्रता चाहिए। और एकाग्रता के बीच में ये सारे डिस्ट्रैक्शन है, फोन, फिर इधर देखो, फिर कौन गया, फिर वो उधर गया। एक तो ज्ञान में एकाग्रता पढ़ते समय, सुनते समय, योग में एकाग्रता, योग में चालू है वो वहां बैठा, कल उधर बैठा था, आज इधर क्यों बैठा, फिर वो उधर बैठा, फिर ये आया, हमेशा आता है तो इसका मोबाइल ही बजता है, फिर आता है तो दरवाजा ही जोर से आता है, तो धड़ाम से आवाज आती है सोफा की, कुछ ना कुछ होता ही है, सब इधर उधर 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 उधर, डिस्ट्रैक्शन। भक्ति मार्ग में त्राटक होता है, एक ही जगह देखते हैं बस, इधर उधर देखना ही नहीं। ये भी एक अभ्यास है। एक दूसरा योग का अभ्यास है, बैठे तो बैठे, आसन जयी, अर्थात 3 घंटा एक ही आसन में जो बैठ सकता है उसको कहा जाता है आसन जयी। आसन को जीता है कोई एक। हमारा हठ योग नहीं है, परंतु हम ये इसलिए बता रहे एकाग्रता के लिए। ये भी एक अभ्यास है, आंखों को स्थिर करना किसी एक बात पर, उंगलियों को स्थिर करना, यहां रख दिया, यहां रख दिया, स्थिर। ऐसा नहीं कि इससे योग लगने वाला है, ना ही इससे, योग से कोई संबंध नहीं है इसका, परंतु इसका संबंध है शरीर को जीतने से, इसका संबंध है एकाग्रता से। वो अलग चीज है, वो तो किसी को अत्यंत प्यार है, वो तो बिल्कुल डूबा हुआ है परमात्मा प्रेम में, उसे ये किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, परंतु ये सारे अभ्यास है माइंड को कॉन्सेंट्रेट करने के। इसके लिए देखना क्या मैं 15 मिनट बिना हिले डुले बैठ सकता हूं, बिना हिले डुले। और योगी के नैन जो होते हैं स्थिर होते हैं, उसमें चंचलता नहीं होती है, स्थिरता योगी के नैनों का लक्षण है। जैसे ही योग में बैठे, कोशिश करके देखना है कि हाफ एन आवर संकल्प करके बैठना है, स्थिर बैठेंगे एकदम एक ही पोजीशन में, उंगली भी ना हिले। क्या होता है, हमने एक भक्ति मार्ग में एक सत्संग में थे, तो वहां पर एक महाराज थे, वो प्रवचन कर रहे थे, तो बहुत देर तक बैठे थे और खुले में चल रहा था और बहुत मक्खियाँ और वो सब था, तो हमको लगा वो उनका एक शायद शू सॉक्स पहना हुआ है, एक पैर लगभग काला काला सा दिख रहा था, पर जब वो प्रवचन पूरा वो काला नहीं सब मक्खियाँ थी, पर वो एकदम स्थिर थे। तो ब्लॉक आउट ऑल डिस्ट्रैक्शंस, डिस्ट्रैक्शंस जो भी है, चाहे डिजिटल, चाहे साउंड या कोई और चीज, इसके लिए एकांत और मौन का है बहुत महत्व है, इस पे मुख्य रूप से मुरली पढ़ते समय, मुरली का अध्ययन करते समय या कुछ भी, क्योंकि ये छोटा सा जो अभी हमने पढ़ा यहाँ पर, इसको समझने के लिए कितनी एकाग्रता चाहिए। अभी जो छोटा सा एक वाक्य पैराग्राफ पढ़ा, इतना सा पढ़ा बस, पूरा भी नहीं, इतना ही, पर कितनी गहरी एकाग्रता चाहिए ये इतनू सा समझने के लिए। भगवान कह रहा है एक एक महावाक्य, एक एक लाइन जीवन को बदल देने वाली है, पर नहीं बदल रही है, अर्थात हम उसको वैसे नहीं पढ़ रहे जैसे पढ़ना चाहिए। तो डिस्ट्रैक्शंस को हटाने का प्रयत्न करने। नेक्स्ट विधि है फूड और स्लीप। टाइम मैनेजमेंट में ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, भोजन और नींद। योगी जीवन अर्थात जिसने ये दो चीजों को सेट कर दिया, नींद को और भोजन, इसका विस्तार नहीं करेंगे, पर ये दो महत्वपूर्ण बातें हैं समय के प्रबंधन में। उसके बाद है क्लब सिमिलर थिंग्स टुगेदर, अर्थात यदि हमें मार्केट जाना है तो ये सारी चीजें सोच लो कि वहां कौन कौन सी चीजें हैं जो हम एक धक से कर सके, साथ साथ जो हो सके, एक ही साथ उस एरिया में जा रहे हैं तो सारी चीजें एक साथ कर सके। ऐसा नहीं कि वहां जाए आ जाए और फिर सोचे अरे वहां पर वो भी था तो वो भी कर लेना चाहिए था। सारी चीजें एक साथ, सिमिलर जो चीजें हैं उनको एक साथ जोड़ देना, इसको भी टाइम मैनेजमेंट में गिनाया जाता है। अगला है घड़ी सामने रखना है, घड़ी सामने कमरे में या उसको बीच बीच में देखते रहना है, टाइम का ध्यान रहेगा। टाइम कॉन्शियस हो जाना वो अलग चीज है, परंतु हमें पता रहना चाहिए और थोड़ा सा अंदर में रहना चाहिए कि अभी बजा है इतना। तो ऐसा नहीं कि 10 बजे हमने सोचा 10:15 तक सोना है पर कुछ और करते करते 11:15 हो गए और 11 हो गए, वो इधर आधा घंटा लेट कर दिया, उधर अमृतवेला वही टाइम पे उठोगे, परंतु वो अमृतवेला वैसा नहीं होगा शक्तिशाली, उसमें हल्का सा नींद का असर होगा। इसलिए वॉच। दूसरा होता है कैलेंडर, कैलेंडर एक कैलेंडर होना चाहिए, और कभी कभी ऑर्गेनाइजर जिसको कहते हैं बड़ा कैलेंडर होता है, कभी कभी मोबाइल में भी होता है जिसमें हम नोट करके रखें कि हमें क्या क्या करना है। जैसे ये कैलेंडर है, इसमें हमारी डेट्स हो कि यहाँ ये है, 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 ताकि भूल ना जाए महत्वपूर्ण डेट्स, चाहे यज्ञ के इतिहास की या अपने जीवन की या दिनचर्या की या मीटिंग्स की, कुछ तो कुछ नोट की हुई हो। तो ये तो सब मोबाइल में भी रहता ही है आजकल, और उसमें कुछ डिटेल हो तो डिटेल, उसमें रिमाइंडर भी होता है, चाहे ऐसा कैलेंडर या तो फिर स्थूल कैलेंडर जो होता है उसमें। तो ऑर्गेनाइजर और कैलेंडर ये बहुत जरूरी है, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये लक्ष्य है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई टाइम वेस्टर्स, मेरे जीवन के, मेरी दिनचर्या के ऐसे वो कौन सी बातें हैं जो टाइम वेस्ट करती है, टाइम वेस्टर्स जिसको कहते हैं, कौन कौन सी है? ब्राह्मणों के एक तो ये डिजिटल टाइम वेस्टर्स, यही बहुत बड़ा है, इसी के इतना विस्तार है, बहुत विस्तार है। और 5 मिनट नहीं, टाइम वेस्टर्स वो नहीं, वो अलग चीज है, गॉसिप्स, गॉसिप्स आर टाइम वेस्टर्स, झरमोई झगमोई, चर्चा करते बैठना, पता कुछ भी नहीं, अनुमान, तुक्के इधर उधर से, तो गॉसिप्स, गॉसिप्स बहुत बड़ा टाइम वेस्टर है। एक तो डिजिटल टाइम वेस्टर, दूसरा गॉसिप्स, झगमोई झरमोई, तीसरा कौन सी चीजें हमारा टाइम वेस्ट कर देती है। झरमोई झगमोई मुरलियों में आता है, पर चिंतन पर दर्शन की बातें, गॉसिप्स इंग्लिश में कहते हैं जिसको, इधर उधर की बातें, इसने ये किया उसने वो किया, ये ऐसा करता है वो वैसा करता है, आज की मुरली में है ना, वरदान में, इसने ऐसा किया उसने वैसा किया, तुमको क्या रूहानी वायुमंडल बनाना है, सहयोग देना है चाहे वो कैसा भी हो, जैसे वो प्रकृति अपना प्रभाव डालती है कभी ठंडा कभी गर्म, वैसे तुम अपनी शुभ का भावना से क्या करो, रूहानी वायुमंडल क्रिएट करो, ये मत कहते बटो ये ऐसा वो वैसा। तो गॉसिप्स, गॉसिप्स एक बहुत जबरदस्त एडिक्शन जैसा है, पर चिंता पर दर्शन, उसमें सब आ जाता है। तो ये और टाइम वेस्टर्स कौन से है, ये सारे प्रोग्राम्स, वो लौकिक प्रोग्राम्स, घूमना फिरना, साइट सीइंग, अननेसेसरी साइट सीइंग, इधर घूमना इधर घूमना उधर घूमना, करना कुछ नहीं है, घूमना भी तो वो ऐसा घूमना हो जैसे माउंट में लोग आते हैं कोई नए स्थान पर पहुंचे, फॉर एग्जाम्पल अनादर आए, आए बरबर सबसे पहले कैमरा निकालते फोटो निकालते चले, प्रकृति को तो देखा ही नहीं, इसको घूमना थोड़ी कहते हैं। वहां जाओ तो वहां पर बैठकर थोड़ी ज्ञान चर्चा हो या चिंतन हो, वो ठीक है घूमना, खाली फोटो निकाल दिया इधर उधर इधर उधर उधर और चलो और उसमें डालो इधर है अभी हम लोग एट अनादर, उसी में लगे, तो वो भी एक टाइम वेस्टर है। नेक्स्ट टाइम वेस्टर नहीं, स्थूल काम पूछ रहे हम, ट्रैवलिंग, साइट सीइंग में आ जाएगा बट अननेसेसरी ट्रैवलिंग। हमको याद है एक बार कहीं हम जा रहे थे अहमदाबाद, तो एक भाई छोड़ने आया, तो उसके साथ दो और आ गए जो उसके दोस्त थे, हमने कहा ये दो क्यों आ रहे, दोस्ती के खातिर उनको जाना नहीं है पर वो दोस्त साथ ही जा रहा है तो हम भी चलेंगे, जाना है और वापस आना है, अरे इनको नींद नहीं करनी है या योग तपस्या, साथ में चल रही है, दोस्ती तो अच्छी थी वैसे पर वो अननेसेसरी ट्रैवलिंग था उनका। तो ट्रैवलिंग, अननेसेसरी ट्रैवलिंग जो है, अनावश्यक इधर उधर घूमना, ये टाइम वेस्टर है। और हाँ, विस्तार करना चीजों का, जरूरत नहीं है उसका, जैसे कोई लौकिक में है बिजनेस, अननेसेसरी विस्तार किए जा रहे हैं जबकि समय है समेटने का, अब ये कर गया वो कर गया, दो तो चालू है प्रोजेक्ट, तीसरा चालू कर दिया, यही ढंग से नहीं हो रहा है, तीसरा चालू करने का सोच रहे, और विस्तार और विस्तार और विस्तार, क्योंकि उससे थोड़ा स्टेटस बढ़ता है, पर वो ढंग से कुछ भी नहीं हो रहा है, कम ही रहो परंतु ठीक रहो, ये ज्यादा अच्छा है। और टाइम वेस्टर, बहुत सारे संबंध बढ़ा देना, फैमिलियरिटी कर देना, नए कनेक्शंस, फेसबुक व्हाट्सएप, इससे नए लोगों से कॉन्टेक्ट जोड़ना और उनके चालू तो फैमिलियरिटी क्रिएट करना, ये टाइम वेस्टर है बहुत बड़ा। कोई नई आत्मा अच्छा है, वो भी अच्छा है, तुम भी अच्छा है, उसको अपने वही रहने दो जो वो है, क्यों नए कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर रहे हो, क्यों संबंध को आगे बढ़ा रहे हो, क्योंकि संबंध तो इतने ऐसे हैं कि तुरंत बढ़ जाते हैं बहुत फास्ट, और वो ऑनलाइन संबंध तो बहुत ज्यादा बढ़ते हैं, बहुत ज्यादा, क्योंकि उसमें व्यक्ति का चेहरा वेरा दिखाई नहीं देता है, खाली उसके शब्द दिखाई देते हैं और शब्द धोखा देते हैं, जो होता है वैसा होता नहीं है और उसमें फंस जाते हैं, वहीं से सारा कुछ क्रिएट हो जाता है, शब्दों की भी आवश्यकता नहीं, वो जो इमोजीज होते हैं ना, इमोटिकॉन्स, वही काफी है, उसमें जो गुलगुल होते हैं ना, वही काफी है, सारा कम्युनिकेशन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन उसको कहते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इमोजीज, वो जो होते हैं ना गुल गुल इमोजीज, इमोटिकॉन्स, इमोजीज, इमोटिकॉन्स एंड इमोशंस, ये एक टॉपिक है. तो विस्तार करना, संबंधों का विस्तार, ये भी टाइम वेस्टर है. नेक्स्ट, नहीं वो नहीं, थोड़ा स्थूल की बात कर रहे हैं हम, एक ही चीज को बार बार करते रहना और टाइम वेस्टर. भोजन, ये अभी तक किसी ने नहीं बनाया, उधर बना हुआ है सब कुछ पर हम लोग स्पेशल बनाएंगे. पोहा बना हुआ है पर पोहा ही बना रहे परंतु स्पेशल पोहा. हाँ, रिमिक्स रिमिक्स, अच्छा एक्स्ट्रा टोमेटो और वो सब कुछ डाल के, ये सब टाइम वेस्टर्स है. और सब कुछ बना हुआ है और उसको तेल से गुजारो, छोक लगाओ हर चीज को तो और टेस्टी बनाओ उसको. डबल पुरुषार्थ, और हर चीज को टेस्टी बनाओ, खाते रहो खाते रहो. द्वापर से किसी का पेट भरा है क्या आज तक? वो भी एक टाइम वेस्टर ना बन जाए. स्लीपिंग, हाँ ये भी एक टाइम वेस्टर है, क्योंकि नींद ऐसी चीज है कि जितना उसको बढ़ाओ उतनी वो बढ़ती है. किसी को 12 घंटे सोने के बाद में भी लगता है अभी नींद पूरी कहाँ हुई है. हमारे पास ओपीडी में बहुत सारी बहनें और भाई आती है, क्या तकलीफ है? नींद, अभी बोलो तो अभी सो जाओ, इतनी नींद आती है क्या करे. दिनचर्या ही ऐसी है, सुबह अमृत वेला करो, नाश्ता करो, सो जाओ, फिर सीधा उठो, भोजन, फिर वापस सो जाओ, फिर गीता पाठशाला इधर उधर जाओ, फिर वापस आओ और फिर सो जाओ. ये ऐसी दिनचर्या है. नींद का प्रकोप, भयंकर नींद, दिन रात नींद ही नींद, ज्वालामुखी नींद. तो इतना भयंकर नींद चलू है, नींद से नहीं छूट पा रहे. हो सकता है कोई बीमारी है, इन्वेस्टिगेट करो, डॉक्टर के पास जाओ, ढूंढो, कोई दवाइयां चालू है जिसका ओवरडोज हो रहा है उसको ढूंढो, कुछ तो है कारण, जिसके कोई विटामिन्स की कमी है या कुछ है, क्यों इतनी भयंकर नींद है. तो नींद भी एक टाइम वेस्टर हो सकती है, भोजन टाइम वेस्टर हो सकता है, घूमना फिरना विस्तार करना, संबंध जर्मी चुपी, शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, शॉपिंग बाहर जाने का छोड़ो, आजकल बाहर जाने की जरूरत नहीं, एक क्लिक किया बाय तो वस्तु आ जाती है सीधा. ये ऑनलाइन शॉपिंग बहुत बड़ा टाइम वेस्टर है. फिर है ऑनलाइन गेम्स, ऑनलाइन गेम्स, ब्राह्मणों को भी हम देखते हैं, कई ब्राह्मण जो एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में अपने मोबाइल पे चालू रहता है, क्या कर रहे हैं तो गेम्स. फिर है ऑनलाइन न्यूज, ऑनलाइन न्यूज, न्यूज देखते रहना, कल उस पार्टी ने ऐसा कहा, अरे इसके प्रत्युत्तर में क्या कहा इसने, ये तो कुछ कहेगा ना, क्या कहा क्या कहा, एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा है न्यूज की, न्यूज देखने की. हाँ तो उसमें ये सब करते रहना. फिर ये डिजिटल में आ जाएगा, नए ऐप्स और नए ये डाउनलोड करो वो डाउनलोड करो, पूरा दिन सारा उसमें ही जाता है, गेम्स में आ जाएगा वो, आउटडोर इनडोर, डिजिटल में सब कुछ आएगा, टीवी मोबाइल व्हाट्सएप टेलीविजन सारा कुछ. तो ये सारे टाइम वेस्टर्स है, ये देखना है कि मेरा टाइम, इसका प्रयोग जरूर करना है परंतु ज्ञान योग और सेवार्थ, बस. इसका प्रयोग मुरली पढ़ने के लिए किया जा सकता है, क्लासेस सुनने के लिए किया जा सकता है, कुछ ढूंढने के लिए किया जा सकता है, नई नई चीजें जो आती है, किसकी आजकल पूछे किसको, किसी को पता नहीं रहती है. तो नई नई चीजें कुछ ना कुछ रहता है, जरूरी नहीं सभी जानना है, थोड़ा तो जानना चाहिए पर, क्योंकि मुरली में आया है वो, भगवान कह रहा है तो जरूर कुछ तो होगा. तो चीजों को जानने के लिए ये बहुत अच्छा है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, पर ये ट्रैप ना बन जाए, माया ना बन जाए, टाइम वेस्टर ना बन जाए, और इससे मुक्त भी रखना. आज है कल नहीं रहेगा तो भी स्थिर. सोचो हमको किसी ऐसे गांव में भेज दिया जहां कोई भी इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, कोई भी मोबाइल चलता नहीं, सब फेल. हमको याद है एक भट्टी हम करने गए थे बहुत पहले, तो सारे कुमार आए थे वहां पर वो जगह ऐसी थी गांव के एकदम बाहर, और वहां पे कोई भी टॉवर नहीं था, तो इतने अच्छे अनुभव हुए सबको. सबके मोबाइल बंद हो गए अपने आप. तो तो ये बंधन ना बन जाए। तो आइडेंटिफाई टाइम वेस्टर्स, हमारे लिए अपना टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई दूसरा ना आ जाए और छीन के ना ले जाए हमसे। और दूसरी चीज, समय को चुराना है, समय को चुराना है। टाइम इतना इंपॉर्टेंट है कि एक एक मिनट, दो दो मिनट, तीन तीन मिनट, बीच बीच में कोई ना कोई चिंतन अंतर चलता रहे। ऐसा नहीं कि बस चार पांच घंटे ऐसे ही निकल गए और पता ही नहीं चला, ऐसे ही व्यर्थ सोच क्या कर रहे पता नहीं, ऐसे बैठे हैं बस देख रहे खिड़की से बाहर, बस देखे जा रहे, उदास सोच रहे, क्या सोच रहे वो भी नहीं पता। एक बार सूरज भाई, राजू भाई जी ने अनुभव सुनाया था, बैठे थे मधुबन में तो खोए थे कोई विचार में, वहां से जगदीश भाई जी आए तो जगदीश भाई ने पूछा क्या कर रहे हो, उन्होंने कहा कुछ नहीं। तो कुछ नहीं पर क्लास कराया फिर जगदीश भाई ने, कुछ नहीं क्या होता है कुछ नहीं क्या होता है क्या ऐसी भी कोई अवस्था होती जहां हम कुछ भी नहीं कर रहे, उस पर उन्होंने क्लास कराया था फिर, ऐसा राजू भाई जी ने बताया है। तो डे ड्रीमिंग, पास्ट का सोचते रहना, ख्याली पुलाव बनाते रहना, ये सब चीजें में टाइम वेस्ट बहुत जाता है। पीछे कोई घटना हो गई बस उसके बारे में सोचते रहना, रोते रहना, उसी में रमन करते रहना। तो आइडेंटिफाई ऑल द टाइम वेस्ट, सो इसको एलिमिनेट करो। तो ये कुछ बातें थी सारी समय प्रबंधन की। तो समय हमारा खजाना है, उसको मैनेज करना है, वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि जो समय को नष्ट करेगा एक दिन समय उसको नष्ट कर देगा। तो बाबा के लास्ट महावाक्य के साथ क्लास की को विराम देते हैं। बाबा ने कहा है, समय है तुम्हारी रचना। समय कौन है? तुम्हारी रचना, तुम हो रचता। समय जा रहा है आगे आगे, समय जा रहा है आगे आगे और तुम हो पीछे। तो समय मुड़ मुड़ कर देखता है और पूछता है, हे मेरे मालिक कहां तक पहुंचे। रचना रचता से पूछता है, हे मेरे मालिक कहां तक पहुंचे। तो समय, हम समय के टीचर है, समय हमारा टीचर नहीं है, हम समय के टीचर है। इसलिए टाइम वेस्ट बंद। एक होमवर्क आप सबको दे रहे, लिख लेना है बाबा ने ऐसी कौन सी चीजें है जिसके लिए बैन लगा दिया है, बैन, जो करनी नहीं है बिल्कुल। दरवाजा बंद, डबल लॉक। एक चीज अभी उत्तर नहीं बनाना, ये होमवर्क है, गृह कार्य। एक है क्लास वर्क, एक है होमवर्क। तो ऐसी 10 चीजें निकालनी है पावरफुल, जो कि मैं कर रहा हूं वो वाली पॉइंट्स निकालनी, और जो करनी नहीं है और जिसके लिए भगवान ने कहा है, बी ए एन, बैन विद कैपिटल बी। ओम शांति।